नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि श्री वृंदावन धाम में शरद पूर्णिमा के दिन बीच रात में भगवान ने बंसी बजाई और सभी गोपियां अपना सब कुछ काम छोड़कर वहां भागी जहां से वो मुरली की आवाज आ रही थी। कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ भोजन बना रही थी, कुछ गाय का दूध निकाल रही थी। हर प्रकार का कार्य छोड़कर वो वहां पर भागे और फिर वहां पर जाकर भगवान ने उनकी परीक्षा ली, क्यों आए हो इतनी रात गए। ऐसे विवाहित औरतों को बीच रात में अपना घर छोड़कर किसी के लिए आना नहीं चाहिए, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन भगवान की जो परीक्षा थी उसमें भी वो पास हो गए। तो फिर भगवान ने ब्रह्मा जी की एक रात तक जितना समय होता है उतना एक रात में समय को बनाकर मंत्र को इधर राज नृत्य किया, पृथ्वी की एक रात के ऊपर ब्रह्मा जी की एक रात उसमें डाल दिया। उन्होंने उतना समय तक उन्होंने गोपियों को राज का आनंद दिया, लेकिन केवल गोपियां ही उनके अंदर प्रवेश प्राप्त करती थी। मैंने आपको पहले बताया लक्ष्मी देवी, शिव जी, इनको भी प्रवेश नहीं मिला। देवताओं को तो दूर से ही देखने को मिलता है और देखने को भी नहीं मिलता है। तो ये द्वापर युग का जो कार्य था राज नृत्य, जीव को मिला हुआ सर्वोच्च आनंद, वो रास के माध्यम से भगवान ने प्रकट किया। तो वो रासस्थली जो है वो बंसीवट है। आप में से कितने लोग बंसीवट गए हैं? हरे कृष्ण। सब लोगों को जाना चाहिए। हाँ, जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवान के दिव्य स्थानों का दर्शन हमको करना चाहिए भक्तों के साथ में। तो ये बंसीवट जो है श्री वृंदावन धाम ने जमुना किनारे में, और बंसीवट में भगवान ने रास किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो जो प्राइवेट लीला थी एकदम कॉन्फिडेंशियल, वो इस जगह पर जहाँ पर आप बैठे हो उस जगह पर हरिनाम संकीर्तन के रूप में सबके लिए प्रकट किया। हमारी योग्यता ना होते हुए भी हम लोगों को, चाहे हम गोपियों जैसे सर्वोच्च भक्त क्यों ना हो, तो नहीं है हम लोग सब लोग, फिर भी हम लोगों को यहाँ पर इस विश्व में कलयुग में पतित अवस्था में ये सर्वोच्च आनंद जो है वो प्राप्त कराया गया। हमको केवल हृदय से भी भाग लेना है। ये हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम इसे भी आलस्य करते हैं, नहीं नाचते हम लोग। क्योंकि जब कोई नृत्य करता है तो नृत्य करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता, और जो भगवान के नाम में कीर्तन करते हुए नृत्य करता है उसके सारे जन्म जन्मांतर के संचित जो है पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो महाप्रभु जी का औदार्य क्या है, महाप्रभु चैतन्य का जो उदारता है वो ये है कि उन्होंने जो सर्वोच्च आनंद केवल कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध था, केवल कुछ ही लोग उसके लिए योग्य थे, वो सर्वोच्च आनंद उन्होंने आम जनता के लिए वो भी कलयुग में उपलब्ध कराए। और ये वो स्थली है जो एक्चुअली श्रीवास पंडित का घर है। श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार हैं, बाकी सारे अवतारों में वो ब्रह्मचारी रहते हैं। ये महाप्रभु जी के अवतार में जितनी भी स्त्रियां थी वो भी पुरुष बनकर आए हैं। ललिता देवी जो है स्वरूप दामोदर बनकर आए, विशाखा देवी रामानंद राय बनकर आए, और कई मंजरियाँ जो हैं वो गोस्वामी बनकर आए पुरुष शरीर में। तो ऐसे भगवान की ये जो औदार्य लीला है, इसको कहते हैं औदार्य लीला, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन रखते नहीं उसके अंदर, जीव के पतित अवस्था को देखते हुए सब शिथिल कर देते हैं। ऑल कंडीशंस क्या कहते हैं उसको, डाइल्यूटेड, शिथिल कर दिया उसको, ताकि सभी लोगों को ये सर्वोच्च आनंद जो है वो प्राप्त हो सके। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं गौलो के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये रासलीला जो इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है भगवान कृष्ण ने द्वापर में, ये गौलोक धाम का सर्वोच्च आनंद है। अगर गौलोक धाम का सार निकाला जाए तो वो सार रास नृत्य के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ, भगवान ने प्रकट करवाया, भगवान ने गोपियों को आनंद दिया उसका। तो वही आनंद, वही पैकेज जो आपको पहले जमाने में द्वापर में रास के रूप में उपलब्ध था, वही भगवान ने कलयुग में सबके लिए हरिनाम संकीर्तन के रूप में उपलब्ध किया। तो जो गौलोक का संपत्ति है वो सबसे पतित युग में उन्होंने प्रकट किया। तो ये विरोधाभास है। हाँ, सबसे पतित लोग जिनकी अवस्था कैसी है, आयु बहुत कम है सबसे, जीवन केवल 100 साल से शुरू हो रहा है। कलयुग में शुरुआत की जो आयु है वो 100 साल है और धीरे धीरे वो कम कम होते, अभी 58 हो गई है एवरेज लाइफ स्पैन। बाकी युगों में 1 लाख से शुरुआत होती है सत्ययुग में, फिर त्रेता में 10,000 से शुरू होती है, फिर द्वापर में 1,000 साल शुरुआत होती है। 1,000 साल लाइफ मतलब क्या, अप टू 400 ईयर्स यंग मैन। अभी 30 साल में बाल सफेद और 30 साल में हार्ट अटैक। हाँ, कितने लोग हॉस्पिटल में आके मर जाते हैं, ग्लोबल हार्ट अटैक। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आयु कम है, स्मृति कम है, सद्गुण कम है, झगड़ालू स्वभाव है, भाग्य बहुत मंद है, आलस से खचाखच भरा हुआ है। जब देखो तभी किसी को काम करने की इच्छा ही नहीं होती। कलयुग का सबसे बड़ा प्रधान कार्य है लोगों का क्या, आलस है, कुछ करना ही नहीं है, सबको बिना काम का पैसा चाहिए, एवरीबडी इज लेजी। यहाँ तक कि शरीर से नहीं, मन से भी लेजी है, विचार करने में भी उनको, अरे तुमने सोचा क्या उस बारे, नहीं यार सोचा ही नहीं, टाइम नहीं मिला उस बारे। सोचने के लिए भी आलस है, मन को भी चलाने के लिए गति नहीं है। इतना सब कलयुग का डैम्पनिंग इफेक्ट है सब जगह पर, सबको शिथिल कर देता है, एवरीथिंग इज सो मंद, धीरे धीरे धीमे धीमे होता है सब कुछ, ढीला है काम। तो कितनी खराब अवस्था है। हाँ, कलावस्मिन युगे जना, क्या कहते हैं उसको, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुतः। ये हमारा हमारी व्याख्या की गई है भागवत में, प्रायण अल्पायुषा मतलब अल्पायुष हो गए और मंद भाग्या सुमंद मतयो, मतलब केवल मंदमति नहीं सुमंदमति, अति मंदमति जिसको कहते हैं, और मंद भाग्य उनका जो कितना भी दिया जाए तो उनको लेने की भी इच्छा नहीं, क्योंकि तो बोलेगा ना कि 10 कदम चलना है वहाँ पर 1 करोड़ रुपए मिलेगा, बोले कौन चलेगा यहाँ से वहाँ, ऐसा मंद भाग्य हमारा। और ही उपद्रता यानी कि हमेशा त्रस्त रहते हैं। देखो आप रस्ते में जाओ, स्टेशन पे जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, सब लोग ऐसा उखड़े रहते हैं हमेशा, ऑलवेज एंग्री अपसेट, कभी कॉपरेट नहीं करेंगे, सीट नहीं देंगे आपको, लाइन में खड़ा करने देंगे, चिल्लाएंगे आपके ऊपर, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करेंगे, ट्रेन में धक्का लगा तो मारामारी करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उपद्रव के द्वारा त्रस्त रहते हैं, ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड। और आज के समय का क्या तकलीफ है, सब लोग तनाव में हैं, बच्चा भी तनाव में है, उसको भी एग्जाम आ रहा है, उसको भी टेंशन है, नींद नहीं आ रहा, आपको उल्टी हो रही है, इतना बड़ा बिस्तर उसके ज़्यादा इतना वजन है, उससे अधिक वजन बिस्तर उसके बैग का है। ये सब कलयुग का बहुत पतित अवस्था है। तो महाप्रभु जी की कृपा क्या है, हमारी अवस्था बहुत पतित है, कोई डाउट ही नहीं उसके बारे में, लेकिन महाप्रभु जी जो सत्ययुग में भी उपलब्ध नहीं है, जो त्रेता में भी उपलब्ध नहीं है, जो द्वापर में भी उपलब्ध नहीं है, वो कलयुग में उपलब्ध करा है। कलेर दोषे निधिर राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। क्या कहते हैं भागवत में लिखा है कि कली दोषों का सागर है, इसमें आप क्या नहीं आपको दिखेगा, सब कुछ मिलेगा दोष इसमें अंदर, एवरीथिंग। इसमें 12वें स्कंद में पूरा वर्णन दिया है कलयुग कितना भयंकर है, उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे दोषों के सागर में एक महान गुण है, वह है कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का जो कीर्तन है ये सबको तार देता है मुक्त संग परम व्रज। कितना भी पतित जीव हो तो ये कीर्तन के सहारा लेने से वो उच्च गति को प्राप्त होता है, मतलब भगवत धाम को प्राप्त होता है। और इतने दोष है कलयुग में कि लोग इसमें जन्म लेने के लिए भी संत लोग कर नहीं इच्छा रखते हैं। इतना होने पर भी वो संत लोग, वही संत लोग जो कलयुग को इतना दोष देखते हैं, लेकिन वो कलयुग की पूजा करते हैं इस एक गुण के लिए, क्योंकि एक एक गुण ऐसा है कि छोटे से आयु में हम लोग अगर भगवान के नाम के जप का एवं कीर्तन का आश्रय लेते हैं तो इस छोटे से काल में 1,00,000 साल की जरूरत नहीं है, 10,000 साल की जरूरत नहीं है, 100 साल की भी जरूरत नहीं है, 1,000 की भी जरूरत नहीं है। जितना भी मिल रहा है 40, 50, 60, 70 जितना भी आपके भाग्य में लिखा है उतने साल में आप भगवान के नाम के कीर्तन का आश्रय ग्रहण करके पूरी तरह शुद्ध होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था इस कृष्ण कीर्तन में की गई है। और ये किसने की है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। जहां सबसे अयोग्य लोग हैं उनके सर्वोच्च वस्तु उन्होंने प्रदान की है। देखो इसको भगवान की दया कहते हैं। भगवान क्या दया कैसे है कि सत्ययुग में कहा है कि आपको 60,000 साल तपस्या करनी होगी। विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, कितने सारे मुनि जो ध्यान में बैठे हुए सब परिवार धन राज्य सब छोड़कर जंगल में तपस्या करे, उसके बाद भी विश्वामित्र मुनि का पतन हुआ है। 60,000 ईयर्स के बाद में भी एक उन्होंने पायल सुनी किसी की तो भंग हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो परिवार छोड़ने का चांस ही नहीं है, धन छोड़ने का चांस नहीं है, आसक्ति छोड़ने का चांस नहीं है, इतना दुर्गुण भरे हुए हैं, इतने आलसी हैं, फिर भी जो कलयुग में प्राप्त नहीं है, जैसे कलयुग में जो ध्यान करके प्राप्त नहीं है हजारों साल, जो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके अश्वमेध गोमेध राजस्वी इतने बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए कई साल लगते थे, ऐसे यज्ञ करने के पश्चात भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है, द्वापर में मंदिरों में भगवान के अर्च विग्रहों की विस्तार रूप में पूजा करके भी जो प्राप्त नहीं होता है, वो कलयुग में केवल कुछ साल भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके प्राप्त होता है। इसलिए आप सब लोग केवल प्रवचन मत सुनो, ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग संदेश है। जो पीछे बैठे सब लोग ध्यान से सुनना कि इसी जीवन में अगर आप अभी बहुत साल तो गुजर गए ना, इसमें तो बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोग जवान हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्र अभी 50-60 के आसपास हो गई है, कुछ लोग एवरेज 30 साल के यहाँ पर होंगे, कुछ साल मतलब बहुत सारा लाइफ तो जा चुका है अभी, और वो जो पावरफुल एज है वो भी जा चुका है। बचे हुए समय में भी अगर आप जग जाते हो और ये कीर्तनाद एवं कृष्णस्य इसको समझ जाते हो कि ये अपने को इस जीवन में स्वीकार करना है, तो भी बचे हुए काल में भी कोई लेट नहीं आपके लिए। बचे हुए कालावधि में आपने आपको जीवन अर्पण कर दिया उसके अंदर, तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते। इसलिए सारे देवता लोग चैतन्य महाप्रभु की इसी कृपा के वजह से लाइन लगाकर खड़े हैं। क्यों? वैष्णवों के घर में जन्म लेने के लिए, क्योंकि तो देवताओं का जीवन होता है ना वो लाखों साल होता है, लाखों साल, ऐसा नहीं किसी लोक में लाखों किसी में करोड़ों भी होता है। ब्रह्मलोक में तो करोड़ों के ऊपर करोड़ों साल होता है जीवन, ब्रह्मलोक सबसे बड़ा आयु वाला लोक है। और वहां के लोग भी यहाँ के आपके घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग भक्त हो भगवान के, अगर भक्त नहीं होते तो यहाँ पर नहीं आ सकते आप लोग। भगवान केवल भक्तों को एंट्री देते हैं अपने धाम में, तो निश्चित रूप में आप भक्त हो। और अपना ब्रह्मलोक का सुख, जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्मलीनता का सुख है, देवताओं का, अप्सराओं का सुख है, सभी सूक्ष्म और स्थूल प्रकार के जो उच्च प्रकार के आनंद है उनको वहाँ प्राप्त है, वो होते हुए भी लाखों साल का जीवन होते हुए भी वो सब लोग आप जैसे लोगों के घर में जन्म लेने के लाइन से खड़े हैं। क्यों? उनको पता है इतना सारा लाखों साल वहाँ भोग लेने के बदले में 70-80 साल में यहाँ पर भगवान के नाम का सहारा लिया तो हम भगवत धाम में जा सकते हैं। तो सभी देवता लोग लाइन लगाते नहीं है, जो देवताओं में बुद्धिमान देवता होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी देवता भगवान के भक्त होते हैं। आमतौर पर सभी देवता भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन आमतौर पर सभी देवता जो देवता लोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं, वो भोग के पीछे लालायित रहते हैं, लिप्त रहते हैं, पूरे मग्न रहते हैं। वहाँ पर भी नारद में जाकर प्रचार करते हैं, उनको जगाते हैं, भोगों से हिलाते हैं, अरे बाबा ज़्यादा भोग में मत रहो, भगवान का भजन करो। दुर्वासा में जाते हैं, अंगिरा में जाते हैं, जाते रहते हैं प्रचार करने के लिए। उसमें से जो भक्त अच्छे प्रगत भक्त हैं देवता, वो सब लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ये चाहते हैं कि आप लोगों के घर में बालक बनकर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़ी आसानी से वैष्णवों के घर में जहाँ पर भगवान कृष्ण का आश्रय उपलब्ध है, भगवान कृष्ण की सेवा उपलब्ध है, भगवान कृष्ण का वातावरण उपलब्ध है, वहाँ पर कुछ ही समय में हमारा ये सारा जन्म मृत्यु का जो जंजाल है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं, कि जब मैं मेरे घर में, वो बड़े युवा मजिस्ट्रेट ब्रिटिशों को जमाने के बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी थे, इतने उनका सम्मान था कि उनके लिए रेल लाइन डाली गई थी उनके घर तक, ऐसा कोई अधिकारी आज तक हुआ नहीं। वो व्यक्ति जब अपने काम से कचहरी से घर पे आता है तो कहता है, गृह थे गोलों को भाई, तो मैं जब आता हूँ मेरे काम से, मैं देखता हूँ मेरा परिवार सब जो है भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं गौलोक में प्रवेश कर रहा हूँ। तो गौलोक में क्या वातावरण क्या होता है, या भगवान के इंद्रस्थान में होते हैं, जितने भी लोग ऐसा उनकी सेवा में लगे रहते हैं उसी में आनंद भी रहते हैं, कोई दुख नहीं होता। तो मेरे परिवार के जनों को देख कर मैं अनुभव करता हूँ कि मैं गौलोक में ही रह रहा हूँ, गौलोक कोई दूसरा नहीं, यही गौलोक है जहाँ पर सब लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के इंद्रस्थान में हैं। थकी है तुम्हारा घर ही, सब लोग उनके घर में रहते हैं, अपने घर में रहते नहीं, ठाकुर जी के घर में रहते हैं। तो ये सब महाप्रभु जी की भेंट है हमारे लिए, एक सर्वोच्च वस्तु है जो किसी युग में किसी को नहीं मिलती है, और एक सबसे पतित लोग हैं, सब युगों में पतित लोग हैं, ये वस्तु इनको दे दिया। सोच रहे सोचो आप कितने दयालु हैं, ऐसी प्राप्ति उन्होंने किसी को नहीं दिया आज तक। हजारों लाखों साल ध्यान करके जो नहीं प्राप्त है, मंदिरों की पूजा करके प्राप्त नहीं है, ध्यान यज्ञ करके प्राप्त नहीं है, वो कलयुग में केवल नाम लेके प्राप्त है। तो ज़्यादा बड़ी उम्मीद भी नहीं करते भगवान, आप लोगों को विरक्त होना चाहिए, घर परिवार छोड़ देना चाहिए, इतने साल के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड कंडीशन भी नहीं है। आप जहाँ रहने वहाँ रहो, जो कर रहे हो करो, पारिवारिक हो परिवार में रहो, प्रॉब्लम नहीं, धन कमा रहे हो धन कमाओ, पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गृहस्थी में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली भगवान का नाम लो बस, और उसमें भी भगवान का नाम का कीर्तन करो, क्योंकि नाम में हमको नींद आ सकती है, फिर कीर्तन में नींद नहीं आती है। और कीर्तन का ये बहुत महात्म्य है कि कीर्तन लोगों के साथ में किया जाता है, तो क्या होता है कि जब आप कीर्तन में भाग लेते हो ना, तो आपकी जितनी उन्नति है भगवान की भक्ति में और बाकी लोगों की जितनी उन्नति, सब मिलाकर आपको उसका लाभ होता है, और दूसरे को भी सबका मिलाकर उसको लाभ होता है, तीसरे को भी सबका मिलाकर उसको लाभ होता है। तो ये साथ का महात्मा है। तो संघ में आने से क्या होता है, जितने लोग आपका सहयोग दे रहे हैं कीर्तन में, वो सबकी आध्यात्मिक उन्नति आपको लाभ देती है, इसलिए कहते हैं संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। सबसे गौरवशाली यज्ञ है ये, इसलिए हमारे लिए करना केवल एक ही है, जो महाप्रभु जी ने यहाँ पर चालू किया ना, हरिधाम संकीर्तन रासलीला यहाँ पर प्रकट किया उन्होंने, रासलीला का आनंद भक्तों को दिया, उसमें हमको कल भाग लेना है। जो जिस जगह पर हरिधाम संकीर्तन होता है वहाँ वैकुंठ प्रकट होता है, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर उनका नाम दो से अधिक भक्त एकत्र होकर लेते हैं, पुकारते हो उनको पुकारते हैं, वही वो चले आते हैं, चाहे वो गटर की जगह बाजू की जगह हो या कोई नरक हो या कोई पापियों का अड्डा हो, अगर वहाँ पर भगवान का नाम लिया जाएगा तो वहीं प्रकट होते हो। नाहम तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठादि नाम तिष्ठामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना किसी के घर में रहता हूँ, जहाँ मेरा नाम पुकारा जाता है वहीं पर मैं रहता हूँ। तो भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका ये भगवान के नाम का संकीर्तन, आपके बद्ध हाथों को वो दिखाई नहीं पड़ेंगे भगवान, लेकिन आपके पास जरूर रहेंगे, उनका सानिध्य रहेगा, उनका अस्तित्व रहेगा, उनका संग रहेगा आपको, और उनके संग से आपको आनंद प्राप्त होगा, आत्मशुद्धि प्राप्त होगी, दुख से आप निवृत्त हो जाएंगे, पापों के प्रभाव से निवृत्त हो जाएंगे, और क्या चाहिए लाइफ में आपको, सब लोग पीड़ित हैं पापों के प्रभाव से, पापों के फल के द्वारा दुखी हैं सब लोग, ये सारे चीज़ एक ही चीज़ में समाई हुई है। ऐसा नहीं कि यज्ञ करेंगे तो पाप से निवृत्ति होगी, फिर अलग से कोई पूजा करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा जरूरी नहीं, एक ही चीज़ करने से पाप निवृत्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, भगवान का सानिध्य, आत्मशुद्धि, आत्म उन्नति एक ही साथ में हो रहा है, सब कुछ ऑल इन वन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीवास ठाकुर का घर है, इनकी पत्नी का नाम मालिनी है, इनके तीन पुत्र थे श्रीराम श्रीपति और श्रीनिधि, सब लोग भक्त थे, और सबसे पहले जो महाराज जी बैठे हैं उनके पास जो दर्शन है, तो सब भक्त लोग बैठे हैं उसके अंदर, और एक टूटा हुआ मृदंग है। तो उसकी कहानी ऐसी है कि सबसे पहले यहाँ पर दिन में भगवान ने, मैंने बताया आपको पहले, संकीर्तन शुरू किया, दिन भर आनंद लेते रहे, और एक बार क्या हुआ नित्यानंद प्रभु यहाँ पर जो बलराम जी के अवतार हैं उनकी भी कथा करेंगे। तो कुछ बालक ऐसे आए वहां से, ऐसे ये संकीर्तन का प्रभाव देखो कितना है, बालक ऐसे आए और बालकों के साथ में उन्होंने कीर्तन शुरू किया। बालक छोटे छोटे थे, हाँ बालकों को देखो हर दो घंटे में कुछ चाहिए खाने को, है ना। आपकी यात्रा में कितने बालक हैं, सबके हाथ में कोई बिस्किट का पुड़ा, कोई वेफर, कुछ चलते रहते हैं हमेशा, मशीन चालू रहते होंगे, एक खत्म हो दूसरी, तीसरा वक्त, चौथा, दे ऑलवेज वॉन्ट समथिंग टू इट। ऐसे छोटे उम्र के बालक थे, कई होंगे शायद 50-100 संख्या में। नित्यानंद प्रभु ने उनको खाली देखा, कृपा अवलोकन करो हम भी बड़ो दुखी, उनका क्या महात्म्य है, वो केवल कृपा दृष्टि से हमको देखते हैं और जिसको भी देखते हैं उनके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और वो केवल आनंद नहीं होते हैं, आनंद से पागल हो जाते हैं, ये उनका महात्म्य है। तो इसलिए देखो क्या करना है, ठीक है। तो ये कृपा अवलोकन उन्होंने किया, अपने दृष्टि उन पर डाली, तो सब बच्चे जो है वो अपने बच्चापन भूल गए कि हम बच्चे हैं और आनंद विभोर हो गए एकदम पूरी तरह से, और उन्होंने कीर्तन शुरू किया। अभी हमने कीर्तन शुरू करेंगे तो कितना घंटा नाचेंगे आप, क्या आइडिया आपका बताओ, हाँ आधा घंटा नाचेंगे, पौना घंटा नाचेंगे, कितना घंटा नाच सकते हैं। हम जब भी नए नए भक्त बने थे तो हम लोग 3-4-5 घंटा नाचते थे, लेकिन 5 घंटे के बाद विश्राम, फिर पैरों का मसाज, 1 घंटा विश्राम, फिर वापस हो सके तो पुनः यात्रा करते थे हम लोग। 2-4-5 हज़ार लोग भक्त इकट्ठा होते थे और बड़ी धूमधाम से नाचते थे, लेकिन 2-3 घंटा के बाद में, 4 घंटा के बाद में तो फिर बैटरी डिस्चार्ज हुई। ये बच्चों ने 3 महीने तक लगातार दिन रात कीर्तन किया, डे एंड नाइट, 3 महीने तक ना भूख लगी, ना प्यास, ना नींद, ना निद्रा, कुछ नहीं हुआ, 3 महीने तक कीर्तन किया। ये कृपा है यहाँ की, नित्यानंद प्रभु ने यहीं पर संकीर्तन में भाग लिया था और वहीं पर बालकों पर ये कृपा की थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दिन भर कीर्तन किया सब लोगों ने यहीं पर कई दिन तक, एक दिन तय किया कि अभी रात को सोते क्यों, हम लोग रात को तमोगुण में सोते हैं, बुरे स्वप्न देखते हैं, क्यों ना रात का समय भी हम लोग कीर्तन में बिताएं। सब लोगों ने बोला हरि बोल, उस दिन से रात को कीर्तन भी शुरू हुआ। उससे हुआ क्या कि यहाँ पर जो बस्ती थी यवनों की, उनको बड़ा डिस्टर्ब होने लगा कि ये लोग हिंदू लोग क्या करते हैं इधर, शोर करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। तो उसमें क्या हो गया कि रात का कीर्तन जो बंद दरवाजे में होने लगा, हर एक व्यक्ति को प्रवेश नहीं था उसके। तो शुद्ध भक्त है, जो पाप रहित है, जो कामना रहित है, उनके लिए इसमें एंट्री था। तो दरवाजा बंद होने के बाद में कुछ ब्राह्मण लोग आके दरवाजा ठोकते थे, अरे हमको भी आने दो, तो उनको दरवाजा खुलता नहीं था, तो उनका अहंकार तो ठीक पहुंच गई, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हमको नहीं प्रवेश देने, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हमको प्रवेश देने नहीं, क्या समझते अपने आपको, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं अंदर, शायद शराब पी के कुत्ते होंगे, दारू पीकर नशे में चूर होंगे, औरतों के साथ संग करते होंगे, ऐसा बदनामी फैलाया उन्होंने, क्योंकि उनका अपमान हुआ। तो जब अपमान हुआ तो वो काजी के पास गए और काजी को बताया, देखो ये कुछ लोग हैं, ये हमारे धर्म में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, नाचना कूदना, नाच को रात को चिल्लाना, रात को चीखना, ऐसा हमारे धर्म में कुछ लिखा नहीं है, तो एक जगह बैठ के शांति से जप करते हैं भगवान के नाम का, ये हमारा धर्म है, ये कोई नया धर्म शुरू किया लोग ने, क्योंकि उनका अपमान हुआ ना, उनको अंदर एंट्री नहीं मिला। तो क्या गया, दुश्मन के पास गए, उसको अलर्ट किया, तो उसने क्या किया, अपने सैनिकों को भेज दिया, पूरे भक्तों को धमका दिया, रास्ते में आते जाते सबको धमका दिया, याद रखना कोई कीर्तन करेगा तो आवाज़ नहीं चाहिए आपको, शांति चाहिए, और ये सब बजाते हो मृदंग वगैरह, ये लो तोड़ देता हूँ। काजी स्वयं आया, चांद काजी जो कंस का अवतार था, वो भी सब लोग भगवान के भक्त हैं एक्चुअली, कोई कंस बन के आता है, कोई जरासंध बन के आता है, लेकिन है तो भक्त भगवान के, रास्ता बना दो। तो फिर काजी स्वयं आया और इस घर में आकर काजी ने कीर्तन का मृदंग तोड़ा, उसका एक नाम खोल है, खोल एक अलग प्रकार का मृदंग होता है, तोड़ दिया, बोला देख रहे हो ना अभी मृदंग को तोड़ा है, बाद में आपकी बारी है। सब भक्तों को एकदम बड़ी भयंकर आवाज से उन्होंने धमकी दिया, सैनिकों के साथ सब भक्तों डर गए। श्रीवास ठाकुर जो थे वो तुरंत आकर नरसिंह भगवान के जो बीच में मूर्ति है ना उसकी पूजा करने लगे, कि बचाओ भगवान संकट आ रहा है। तो ये धमकी देकर काजी जा रहा था ऐसे, और चैतन्य महाप्रभु मतलब गौरा महाप्रभु ऐसे वहां से आ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कोई बातचीत नहीं हुई, सीधे उसको देखा, महाप्रभु सीधे यहाँ पर आए। तो सुभाष ठाकुर बड़े उद्वेग से, बड़े भावना से, आवेश में नरसिंह भगवान को भोजन कर रहे हैं, संकट मोचन करने के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं, श्रीवास डोंट वरी, मैं हूं ना, देखो मैं क्या करता हूँ। उसी शाम को सबको आह्वान किया, आ जाओ जितने वैष्णव है भगवान के नाम का जप कर, सब लोग आ जाओ, एक एक मशाल लेकर आओ अग्नि जलाने के लिए, मशाल लेकर आना, मृदंग लाना, करताल लाना, खोल लाना, सारे वाद्य लेके आना, हजारों लाखों की संख्या में आना, और हम लोग कीर्तन करेंगे सूर्यास्त के बाद मशाल जलाकर, और सब लोग काजी के घर मोर्चा निकालेंगे, और काजी को पूछेंगे, व्हाई, क्यों आपने हमारा कीर्तन बंद किया। जो डरे हुए थे ना, उनको भी अंदर हवा आ गई, ना उत्साह की हवा, हाँ निर्भयता की हवा आ गई, उसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी। एक साथ आ गए ना, एकदम उत्साह आ जाता है, एकदम पतला सा आदमी भी एकदम जाके नेता बन जाता है। ये संघ का महत्व है, संघ में हमारी शक्ति बढ़ती है, सबकी मिलकर शक्ति आपकी शक्ति हो जाती है ना। और वो संघ अगर भगवान का नाम का हो, भगवान के भजन का हो, भगवान की भक्ति का हो, तो उसके क्या कहने। तो जब डरे हुए भक्त थे, नाम लेने को डर रहे थे, वो सब लोग उत्साह से आ गए, मशाल जलाकर महाप्रभु जी ने संकीर्तन शुरू किया। सबसे पहला रास्ते पर किया हुआ इतना भयंकर आंदोलन उसके पहले कभी हुआ नहीं था। तो यहाँ से मोर्चा निकला, और जहाँ पर हम गए ना आज सीमांत द्वीप, वहाँ पर उसका घर था, हम लोग एक जगह मिस हो गया, हमारा याद नहीं रही हमको, वो है चांद काजी का समाधि, वहाँ पर उसका घर था। तो ये सब मशाल लेकर आ रहे हैं, हजारों मृदंग बज रहे, हजारों कीर्तन चल रहा है, हजारों लोग गा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से सुनियोजित, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो सैनिकों को भेजा उन्होंने, तो क्या हुआ, सैनिकों की दाढ़ी अपने आप जलने लगी, आग लग गई उनकी, सुधर गए वो, कहाँ से आग लग गई पता नहीं। कुछ लोग आगे चले गए तो वो कीर्तन में ज्वाइन हो गए गए थे कीर्तन को मना करने के लिए, लेकिन ऐसा प्रभाव था लोगों का, भाव ऐसा था कि वो अपने शस्त्र डाल के उसमें नाचने लगे हरि बोल। कुछ लोग डर के मारे, कुछ लोग भाव विभोर होकर, लेकिन ज्वाइन हो गए उसके, और कुछ लोग देख के ही भाग गए, उनको दूर से अंदर भाग गए। इस तरह से इतनी फौज आई थी, सब पता नहीं कहाँ चली गई। ये देख रहे काजी ऊपर से कि पता नहीं मेरे सैनिकों को क्या हो गया, इतने हिम्मत वाले थे बेचारे, क्या हो गया उनको आज वो भी अपने ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर चला गया, एक कमरे में छुप गया जाए। ये मोर्चा उनके दरवाजे में पहुँचा, सब लोग चिल्ला रहे मारो काजी को, मारो काजी को, मारो, चिल्ला रहे मारो, जो कल डर के मारे भाग गए थे वो भी बोल रहे मारो। दरवाजा खटखटाया, बहुत देर के बाद नीचे आया, दरवाजा खोला, क्यों नहीं दरवाजा खोलते हो, वहाँ के मेहमान हैं, वहाँ आपको मिलना चाहते हैं, हम दरवाजा भी नहीं खोलते, कैसे हेले गेले आप। फिर वहाँ पर चर्चा होती है उनकी, आपके कुरान में क्या लिखा है, हमारे वेद में क्या लिखा है, बड़ी लंबी चर्चा है वो। उस चर्चा में महाप्रभु जी काजी को परास्त कर देते हैं। वो काजी कहते हैं, अरे आपके नाना जी है ना नीलाम्बर चक्रवर्ती, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुम तो मेरे भतीजे हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हो। मतलब पहले था शेर, अभी बना म्याऊ। भगवान की शक्ति ऐसी है। और वो कहते हैं कि हमारे कीर्तन को मना क्यों कर रहे हैं आप, भगवान का नाम लेते हैं, क्या गलत काम करते हैं। तो काजी उस समय काजी होने पर भी उसने ये जान लिया कि आप परम भगवान हो। जैसे आप, मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे अंदर से अनुभूत हो रही है, अनुभूति हो रही है कि आप हमारे अल्लाह हो जिनकी हम पूजा करते हैं, वही आप हो, और दूसरे नहीं हो सकते आप। मैं आपको शरण आता हूँ, आई सरेंडर टू यू, और इसके आगे वादा करता हूँ कि आप कभी भी हमारे इलाके में हमारे कोई व्यक्ति आपका कीर्तन नहीं रोकेंगे, अब जब चाहे, जब जितना समय चाहे, जहाँ चाहे, रास्ते में, घर में, कभी भी कीर्तन कर सकते हो। सारे ब्राह्मण जो कंप्लेंट करने गए थे वो चुप हो गए, अरे काजी सरेंडर हो गए, तो हम क्या कर गए थे। उन्होंने जाकर बताया था लोगों के अंदर, जाके बताया था कि श्रीवास ठाकुर का घर जो है उसको उठाकर नदी में फेंकना चाहिए, ये लोग बड़े अपराधी लोग हैं, क्योंकि अंदर दुख था ना, हमको प्रवेश नहीं दिया। तो ये जो है पहला खोल भांगा ढांगा, मतलब यहाँ पर वो काजी ने मृदंग तोड़ दिया, इसलिए वो उसका स्मृति में रखा है। कि भक्तों को भी डरना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं कि काजी इतना जल्दी सरेंडर क्यों हो गया, क्योंकि जिस दिन वो यहाँ पर आया और श्रीवास ठाकुर के घर में आके धमकी देके गया, उस दिन रात को सोया, जब रात को सोया उसके सपने में सिंह आया, सिंह बहुत जोर से डरकाली करते हुए चिल्लाते हुए गर्जना करते हुए आया और सीधे उसके उसके जो तो पंजे है ना उसे खंधे में डाल दिए, तो सारे 10 नाखून जो है वो खंधे में घुस गए उसके। हाँ, यू कैन इमेजिन, वो सोया वो आदमी ऐसा लेटा हुआ है तो उस पर सिंह जो है वो कूद गया ऐसा, और दोनों हाथ से ऐसे खंधे पकड़े तो सारे उसके नाखून जो है खंधे में घुस गए, वे जग गया बेचारा। जोरदार आवाज में धमकी दी उसको, मेरे भक्तों का तुमने मर्दन तोड़ा है, आज के बाद कभी मेरे भक्तों को कुछ तुमने किया, कुछ बोला, कुछ जख्म किया, कुछ नुकसान उठाया तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। मेरे पंजे को देख रहे ना, एक क्षण के अंदर तुम्हारा गला घोट दूंगा। और मैं तो ऐसा कोमल आवाज में बता रहा हूँ, हाँ आपको डर लगा क्या मैंने बोलने के बाद? लगा डर, किसको डर लगा, हंस रहे सब लोग, डरने का सवाल नहीं। अरे नरसिंह भगवान सपने में आए, उसके तो साक्षात क्रोध है वो, हाँ पूरे देवता लोग कांप रहे थे उनको देखकर, ऐसे भयंकर क्रोध वाले नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उसके रात के सपने में, उसको धमकी दिया तभी वो उधर से ही सरेंडर हो गया था। वो आएंगे तो पूरा सरेंडर होना ही अपने को, क्योंकि श्रीवास ने यहाँ पर नरसिंह भगवान की पूजा की थी ना, कि आप लोग विश्वास रखना चाहिए नरसिंह भगवान हर भक्त को संकट से काटते हैं, आप प्रयोग करके देखिए, तो संकट आता है उनका नाम लीजिए। हमारे प्रभु जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जानते हैं आप? तो हमारे यात्रा में बड़े 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 हस्तियाँ यात्रा करती हैं, पता नहीं क्यों। ये बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट चर्चगेट क्या वीटी में हुआ था ना, उसमें वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम करते थे, उधर थे वो, उनका फोटो लेके आए हुए इधर। तो भयंकर उधर हाहाकार हो गया ना, उधर अजमल कसाब को पकड़ा गया, बाकी सब लोग मारे गए, वो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर प्रभु जी पुलिस में काम करते हैं, विशेष एंटी क्या कहते हैं उसको मराठी में, अरे वो इंग्लिश में हो गया ना, अतिरेक होती ना, अतिरेकी आतंकवादी विरोधी पथक में काम करते हैं। उनके आगे में क्या था, AK-47 ऐसे देखे खड़े उधर बीटी में, कोई फोटो निकाला और वो सब जगह व्हाट्सएप में घूमता रहा। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने अपना बयान दिया है और महाराज जी से भी मिलकर उन्होंने बताया था कि उस समय उन्होंने नरसिंह भगवान का प्रेयर जो है वो कान में लगाया और वो आगे अटैक करने चले गए, जीवन मृत्यु का संघर्ष था। उधर भी उन्होंने नरसिंह भगवान की याद की और आगे बढ़े। वो कहते हैं कि राधानाथ महाराज ने उनको 77 टाइम्स आलिंगन दिया है, वो गिन रहे हैं। नरसिंह भगवान कहने का तात्पर्य क्या है, नरसिंह भगवान आपको हर संकट से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा संकट क्या है, भगवान की विस्मृति का, उससे भी आपको बचा सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से बहुत सुंदर कार्य हुआ है। और फिर इसी जगह पर एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को पूरे कुरुक्षेत्र का दर्शन कराया, कौरव सेना, पांडव सेना, अर्जुन, कृष्णा, पूरी सेना जो है कुरुक्षेत्र की 18 अक्षवणी सेना से भरा हुआ जो कुरुक्षेत्र था उसका दर्शन अपने घर में कराया उन्होंने। अब भगवान गीता बोल रहे हैं, वो भी दर्शन कराया इसी जगह पर। इसी जगह पर आप बीच में देखेंगे तो क्या दर्शन है, एक दिन भगवान आए, गौरांग महाप्रभु आए, हर रोज भगवान की पूजा करते, भगवान का नाम लेते, वो दिन सीधा ऑल्टर पे गए, वेदी पे चढ़े, उधर जितने भी भगवान की मूर्ति वगैरह थे उसे गोद में लिया और खुद जाके सिंहासन पे बैठ गए और कहा श्रीवास मेरी पूजा आरंभ करो, स्टार्ट माय वर्शिप। और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले वो कीर्तन हुआ कि बजायो जयो गौरा चांदे आरती को शोभा जानवी तट बने जगमान लोभा। वो जो षटपर लीला है महाप्रकाश लीला, वो उसका दर्शन बीच में है। वहां पर भगवान पहली बार ओपनली सबको बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, छत्र पकड़ के ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नारद मुनि प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए हैं, हाँ ब्रह्मा शुक्र कुमार सब ऐसे दिव्य लोग भी प्रकट हुए, ऐसा नहीं कि केवल यही के भक्त लोग थे, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनत कुमार जी, सब लोग प्रसन्न प्रकट हुए हैं। कोई चावर दे रहा है, कोई और कोई सेवा कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। ऐसा दिव्य महाप्रकाश जो है चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दर्शन दिया है। मैंने आपको बताया ना, श्रीधर जी को यहाँ बुलाया गया। सब लोगों को कृपा मिली। सबसे पहले किसको मिली? दुखी जो पानी लाने वाली स्त्री थी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सच्ची माता को कृपा नहीं मिली। सब भक्तों ने कहा, महाप्रभु जी आपकी माता का क्या हुआ? भले मेरी माता को कृपा नहीं दे सकता मैं, वो अपराधी है। अरे माता तो जगन माता है, सबकी माता है, वो आपको जन्म दिया उसने, वो कैसे अपराधी हो सकती है? नहीं, उन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया। अरे कैसे अपराध किया अद्वैत आचार्य? कि जब उनका ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप घर छोड़ के चला गया था, तब इनके मन में उनके बारे में बुरे विचार आए थे। ये जो अद्वैत आचार्य है ना, इनका घर वहाँ सामने है, दो घर है, एक अद्वैत भवन, एक गदाधर भवन, इसके बाजू में एक दो मिनट के अंदर पे। तो वहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है निमाई का। वहाँ से विश्वरूप वहाँ पर जो पढ़ने के लिए आते थे और अद्वैत आचार्य के सान्निध्य में भागवत पढ़ते थे। तो जब वो विवाह का बात निकली उनकी, तो सुनते ही वो चले गए घर से। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को दोष दिया मन में कि ये सब उनका काम है, उन्होंने इनको भागवत पढ़ाया, विद्वान करवाया, वेद की वेदों का ज्ञान दिया, तो इतने विरक्त हो गए वो, इनके संग से इतने विरक्त हो गए कि घर छोड़ के ही चले गए। वो शादी वादी करने के बाद दूर रह गई, विचार करने के पहले ही चले गए, ये इनका दोष है। तो वैष्णव का दोष जो अपराध है वो मन से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन से करेंगे तो तन से भी करेंगे, वाणी से भी करेंगे। तो ये बात वही समाप्त हुई थी, उन्होंने मन में उनको दोष दिया था कि इनकी वजह से मेरा पुत्र चला गया। माता का दिल है, वो स्वाभाविक बात है, किसी ने किसी को दोष देने वाली है वो, क्योंकि पुत्र चला गया छोड़ के, गायब भी हो गया, मिला ही नहीं बाद में कभी, वो पता चला संन्यास लेके देहांत भी हो गया उसको, कभी दिन के बाद नहीं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं उनको कि माता ने अद्वैत आचार्य ऐसे महान वैष्णव का अपराध किया है। तो जब तक वो अद्वैत आचार्य का अपराध का क्षमा नहीं मांगती है, और जब तक अद्वैत आचार्य उनको क्षमा नहीं करते, तब तक उनको कृपा नहीं मिल सकती। देखो महाप्रभु जी की माँ है वो, और सब भक्तों को महाप्रभु ने अनंत कृपा किया, कृष्ण प्रेम में डुबा दिया सबको। तो फिर माता जो है इतनी रोई, इतनी रोई, अद्वैत आचार्य के पास भाग भाग के गई और कहा कि आप मुझे माफ़ कर देना, आप मुझे माफ़ कर देना। बोले कैसा अपराध, क्या अपराध, क्या बोल रहे हैं आप, मुझे तो कुछ याद नहीं। नहीं, आप मुझे माफ़ कर देना। तो उन्होंने क्या किया, अद्वैत आचार्य ने सच्ची माता का ही गौरव करना शुरू किया, सच्ची माता का गौरव करना शुरू किया, गुणगान करना शुरू किया, और गुणगान करते करते स्वयं बेहोश हो गए वो, इतने आनंद में माता का गौरव करते करते बेहोश हो गए। तो तुरंत उन्होंने उनके चरणों के रथ जो है सर पे लगा लिया, और फिर महाप्रभु ने उनको भी कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत कर दिया। तो वो भी लीला यहीं पर हुई। क्या बताती है, हम कितने भी महान होंगे, भगवान के माता भी होंगे, लेकिन भगवान जो है ना, भगवान ने कहा है कि बलराम जी और लक्ष्मी जी भी मेरे भक्त के सामने मुझे प्रिय नहीं है। गुरु भाई बलराम जी कितनी प्रिय भगवान को, लेकिन खास करके बृहद भागवतामृत में भगवान ये स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि मेरी लक्ष्मी और बलराम जी भी मेरे भक्त के सामने मुझे कुछ भी नहीं है। इतना मत भक्ता पूजा व्याधि का, मेरी पूजा करने दे, मेरे भक्तों की पूजा करो, मुझसे अधिक मुझे मेरे भक्त प्रिय होते हैं, मेरी पूजा करने के अधिक मैं मेरे भक्तों की पूजा करने को अधिक स्वीकार करता हूँ मेरी पूजा के रूप में। तो उन भक्तों का अपराध वो कभी सहन नहीं करते, चाहे मन में किया हो, तन से किया हो, वाणी से किया हो। हमने कितना भी महान महान सेवा किया होगा, लेकिन अगर हम भक्तों का अपराध करते हैं, भक्तों को दिल को दुखाते हैं, तो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते, आपकी सारी सेवा को उठा के फेंक देंगे, नहीं चाहिए आपकी सेवा, गेट आउट फ्रॉम हियर। जैसे आपने आके मेरी बहुत स्तुति किया, बहुत मुझे गिफ्ट दिया, मुझे कपड़ा दिया, मुझे गौरव किया, मेरे ऊपर कविता लिख के दिया, महाराज आपने कितने बड़े महान हो आप, और सब किया, दो घंटे चार घंटे बिताए मेरा गौरव करते करते करते, मुझे खिलाया पिलाया, गिफ्ट दिया, वस्त्र दिए, गौरव किया वाणी से, हाँ ज़्यादा मेरे बच्चे भी तमाचा मार के चले गया, तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, इतना तारीफ किया तो कैसे उसको, सारा गिफ्ट उठा के खिड़की से फेंक देंगे, उसको पकड़ के तुरंत पीटना शुरू कर देंगे, मेरे बच्चे को क्यों हाथ आया? यू डोंट केयर आपका कितना गौरव किया है, उसकी परवाह नहीं करते आप। क्योंकि जिस पर आप प्रेम करते हो उस पर अगर आप कोई अपराध करता है तो अपना भी गौरव आप भूल जाते हो, और अगर कोई घर पे आपके आएगा आपका कोई गौरव नहीं करेगा, आपको देखेगा भी नहीं, अगर आपके बच्चे को चॉकलेट देगा उसको प्रेम करेगा तो आप प्रसन्न हो जाओगे, आपको अलग से तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही भगवान। तो इसलिए भगवान इस लीला से बताते हैं कि कैसे भक्तों को अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो एनीवेज हम लोग इस राजस्थली में बैठे हैं, जो वृंदावन की राजस्थली है वो ये और ये स्थान अभिन्न है। सब लोग श्रीवास पंडित को वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ये उनका स्थान है। एक निरपेक्ष निस्वार्थ भक्ति से भरा हुआ संपृक्त जीवन उन्होंने यहाँ पर बिताया है, और भगवान की दया में ऐसी सहायता की है, हाँ, कोई गर्व ना करते हुए, कोई भी अभिमान नहीं, हर तरफ से भक्तों का संग सेवा करने के लिए तैयार है। कोई साधारण बात नहीं है, अगर आपके घर में दिन में भी हजारों भक्त हैं और रात को भी हजारों भक्त हैं तो कैसा रहेगा, कोई प्राइवेसी है ही नहीं आपके लिए, कोई पत्नी से बात करने का समय नहीं, दिन रात भक्त बैठे हुए हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, रात को तो पागल जैसे चीख रहे हैं, उल्टा सुलटा हो रहे हैं, अति आनंद की दिव्य अनुभव कर रहे हैं, और ये भी जगे हुए हैं, रात को दिन में भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं, दिन रात भक्तों की सेवा में डूबे हुए हैं, बताओ सोचो आप ऐसा जीवन है, और कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, क्या भगवान पे प्राइवेसी है ही नहीं कुछ हम लोग बोले कुछ ना कुछ टाइम चाहिए अपने लिए खुद के बारे में सोचने के लिए, लेकिन इनका खुद का कुछ है ही नहीं, जो भी है महाप्रभु जी का है, जो महाप्रभु की इच्छा होगी। अपने बालक की मृत्यु होने के बाद भी उसने बोला रोना नहीं है, कीर्तन चालू है, डिस्टर्ब नहीं करना है। महाप्रभु सोचते हैं कि ऐसे भक्त का संग मैं कैसे त्याग सकता हूँ संन्यास लेने के बाद, संन्यास लेने के बाद छोड़ना पड़ेगा ना, कहीं जाना पड़ेगा, जन्मस्थान से दूर जाना पड़ेगा, तो ये जो मेरे भक्त हैं इतने मेरे मित्र हैं इनका संग में हाउ आई कैन लीव, भगवान को प्रश्न है मन में। ऐसे महान श्रीवास थे, वैसे उनकी पत्नी मालिनी, और मालिनी और नित्यानंद प्रभु का खास विशेष प्रेम था, एकदम विशेष, बालक की तरह है, बड़े शरीर के लेकिन बालक की तरह प्रेम करते थे उनके ऊपर, भोजन करा देते उनको एक बालक की तरह, माता और पुत्र का भाव था उनका, मालिनी देवी का। और ये दोनों श्रीवास पंडित और मालिनी देवी जब महाप्रभु गौरांग का जन्म हुआ निमाई का, तो दोनों भेंट वस्तु लेकर उनके घर पे गए थे, और बड़े आनंद से अभिनंदन किया था उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा का और सची माता का। मतलब योगपीठ का परिवार और यहाँ का परिवार एक ही परिवार था, इतना प्रेम था उनके अंदर। अद्वैत आचार्य सीता देवी ये भी एक ही परिवार था, वो भी यहाँ पर आए थे शांतिपुर से उनको मिलने के लिए। तो हर आनंद के उत्सव में, हर संकीर्तन में, हर सेवा में ये सारे भक्त लोग साथ में मिलकर रहते थे। एक आदर्श जीवन जो है उन्होंने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल रखा है कि हम भक्तों को अपने स्वार्थ को छोड़कर कैसे एक दूसरे के साथ भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, और भक्ति में ही हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सत्संग हुआ यहाँ से बाहर गए तुरंत शेयर मार्केट बिजनेस क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, उसका रेट रेट कितना है, कितने में माल बेचा, हाँ ये सब दुनियादारी की बातें नहीं करते हम लोग, करना भी नहीं चाहिए। जब भक्त मिलते हैं तो केवल भक्ति की बातें होनी चाहिए, बाकी दुनिया में बहुत लोग हैं आपको बिजनेस की बातें करने की, लेकिन भक्त बहुत कीमती होता है, बहुत अमूल्य होता है, उसका संग प्राप्त होना बहुत दुर्लभ होता है। और ऐसे भक्तों का अगर बड़ी मात्रा में संग हुआ तो उसमें भी हम क्या सोचते हैं, अरे इसमें शेयर मार्केट का डिवोटी कौन है, इसमें LIC की पॉलिसी कौन बनाएगा, एजेंट सोचता होगा मन में बैठ के, है ना। तो ये जो विचार है, ये भौतिक विचार का जो ये मायावी विचार है ना, इसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भक्त का संग बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, उसके साथ में मिलने से हमको केवल भक्ति की बातें करनी चाहिए। ये जो भक्त है, श्रीवास पंडित है, ये अद्वैताचार्य है, ये गदाधर पंडित है, इतने लोगों का यहाँ वर्णन चैतन्य चरितार्थ में आता है, एक ही वर्णन आता है, ये मिले, इन्होंने कृष्ण की कथा की, कृष्ण का प्रसाद लिया, कृष्ण का कीर्तन किया, बस और कुछ नहीं किया। बोले तुम्हें कुछ बोर नहीं हुआ क्या उनको, जब देखो कृष्ण 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 क्या है ऐसा नहीं है, ये दिव्यता है। इस दिव्यता के स्तर पर हर चीज का आनंद दिव्य ही होता है, क्योंकि दिव्य वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य वस्तु के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमको भी ये हमारा जीवन का जो है मोल्डिंग, ये दिव्य वस्तु के साथ में करना है, भगवान के साथ में करना है, भगवान और उनके भक्तों के साथ में हमको अपने जीवन को जोड़ना है, फिर हमारे जीवन में दुख नाम की चीज बचेगी नहीं। चाहे आपको बड़ा रोग हो गया हो, चाहे आप गरीब हो, नीचे कुल वाले जन्म लिए हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, बहुत सारे दुख आपके जीवन में होंगे, ऐसा सब होने के बाद भी आप सब लोग हमेशा दिव्य आनंद में रह सकते हो अगर आप भक्तों का संग जो है हरिनाम के साथ में करोगे। तो श्रीवास पंडित को प्रणाम कीजिए आप, ये बहुत बड़ी दिव्य स्थली है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद में नित्यानंद प्रभु स्वयं जीव गोस्वामी को लेकर भी आए थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जब जीव गोस्वामी ने यहाँ पर प्रणाम किया तो प्रणाम करके उठ ही रहे थे तो उनको सामने दर्शन हुआ, उनके आंखों के सामने चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, सभी वैष्णव जो उस समय यहाँ पर नहीं थे, अंतर्धान हो चुके थे, वो सब प्रकट होके कीर्तन हुआ, उसका दर्शन हुआ उनको, और वो कीर्तन देखकर जीव गोस्वामी बेहोश हो गए और एक क्षण के बाद सब ओझल हो गया दृश्य, और वो रोने लगे छाती पीट पर करके, मैं थोड़ी देर पहले जन्म क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों जन्म ले लिया, मेरा जन्म लेट क्यों होगा, इतना दुर्भाग्य क्यों हूं मैं, इतना सुंदर रस भरा आनंद भरा कीर्तन मैं देख नहीं पाया, लेकिन मेरा भाग्य है कि कम से कम कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो मुझे कीर्तन का दर्शन हुआ। तो जय गोस्वामी कौन है, सखी के मंजिल के अवतार, और नित्यानंद प्रभु ने स्वयं उनको ब्रज की परिक्रमा की, और श्रीवास ठाकुर, बंसीवदन ठाकुर, ईशान ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और जय गोस्वामी, इन्होंने फिर ये सीमांत द्वीप का यहाँ पर यात्रा किया है, उसका वर्णन जो है नवद्वीप महात्म्य में ठाकुर भक्ति विनोद जी करते हैं। ये बड़ी दिव्य स्थली है इनका, ये जगह पर जहाँ आप बैठे हो ये सब महान वैष्णवों का, स्वयं भगवान बलराम कृष्ण अवतरित हुए, उन सबकी चरण धूलि यहाँ पर उपलब्ध है, यही वो स्थान है। हाँ, टाइल लगाने से इसका महात्म्य कम नहीं होता है, स्थान और उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी जो चेतना है वो यहाँ पर उपलब्ध है, आपको आपका भाव कैसे ट्यून्ड है उसके ऊपर आपको यहाँ का जो आनंद है वो प्राप्त होगा। इसलिए हम कम से कम 5 मिनट क्यों ना हो यहाँ पर कीर्तन करेंगे। उसके पहले आपको विनती है कि ये जगह जो है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जगह अगर नहीं मेंटेन की जाएगी तो हम लोग कहाँ आएंगे और कहाँ बैठेंगे और कहाँ दर्शन करेंगे। तो यहाँ के भक्त लोग बेचारे यहाँ पर रहते हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, कोई जवान है, उन्होंने अपना सब कुछ परिवार त्याग करके विरक्त होकर ब्रह्मचारी बन के हुए यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर देखो गलीब का प्रभाव कैसा है, भगवान के जगह पर भी आके चोरी होती है। मैं जब वृंदावन में गया था, उद्धव क्यारी नाम की बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पर उद्धव के सामने गोपियों ने अपने हृदय के दुख व्यक्त किया था, अति उत्कट प्रेम का भाव व्यक्त किया था, वो जगह पर उद्धव जी का वस्त्र ही कोई चोरी करके लेके गया, मंदिर में आकर उद्धव का अलंकार मुकुट सब उतार के सब चोरी करके लेके गया। यहाँ पर भी लोग ऐसे ही भगवान के मंदिर में आकर भगवान का वस्त्र चोरी कर लेते हैं, इसलिए महाराज जी ने बताया कि वो ग्रिल लगा दिया उसके ऊपर ताकि भगवान का वस्त्र श्रृंगार रहे वैसे ही। तो वो विनती कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर रहते हैं गर्मी में, तकलीफ में, सर्दी में रहते हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, लाइट जाती है आती है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, इस जगह पर ऐसे लोग महाराज लोग रहते हैं और ऐसे सुंदर पवित्र स्थल, हाँ दिखने में शायद आपको पेंट अच्छा दिखता नहीं होगा, टाइल शायद बम्बई जैसा नहीं होगा, तो कहना क्या है इतना इतना महान क्या है इसके अंदर, इसकी महानता दिव्य रूप में है, आध्यात्मिक रूप में है इसकी महानता, और ऐसे महान दिव्य स्थली को ये मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोगों का फर्ज है कि हम लोगों के जेब से हम जो आमदनी करते हैं थोड़ा बहुत धन जो है यहाँ देना चाहिए, ताकि आप आज आ रहे हो, आपके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े जाएंगे हो जाएंगे अपने बच्चों को लेके आएंगे तभी भी ये स्थान रहना चाहिए ना यहाँ पर, तब वो कहेंगे कि हम लोग सेवा सानंद में गए थे, यहाँ पर भगवान ने रास प्रकट किया था हरिनाम संकीर्तन के रूप में, तो क्या बताएंगे, अरे ये जंगल जो है ना यहाँ पर वो श्रीवास पंडित का घर था, ऐसे बताएंगे आप। तो आज आपको उसका अनुभव मिल रहा है साक्षात, आंखों के सामने कुछ दर्शन भी है, उसकी महिमा आप समझ रहे हो। तो हम जैसे लोगों को जो बम्बई से आते हैं, शहर में रहते हैं, धन कमाते हैं, उनको यहाँ पर आकर निश्चित रूप से दान देना चाहिए, ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जब हम देंगे जैसे, क्योंकि यहाँ का उधर निर्वाह जो है, वहाँ का जो मेंटेनेंस है वो भिक्षु के, मतलब जो लोग दान देते हैं उसी पर ही चलता है, और फिर यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस तो नहीं करते, भगवान को भजन करते हैं, यही उनका बिजनेस है, और क्या है, भगवान का प्रसाद वहाँ रखा है, भगवान की किताबें रखी हैं, दिव्य दान दे रहे सब लोग यहाँ। तो हम लोगों को अपनी तरफ से हर जगह पर शिवा सांगन में, हर जगह पर जितना भी क्षमता हो अपनी यथाशक्ति दान देना चाहिए, ताकि यहाँ का सुरक्षा बनी रहे, स्थान का पवित्र बना रहे, पूजा अर्चा बनी रहे, इनकी दिव्य साहस स्पिरिचुअलिटी बनी रहे और हमको भी उसका लाभ होता रहे। हमारे देश में ऐसी संस्कृति है, जो राजस्थान के लोग हैं ना, वो कुछ महीने में वृंदावन में आते हैं, इतने गरीब होते हैं वो, लेकिन फिर भी अपने हाथ से 25 पैसा और बच्चे के हाथ में 25 पैसा देकर मंदिर में डालते, क्योंकि वो कल्चर है देने का। आप गरीब से गरीब भी होंगे तो भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, लेकिन देने की प्रवृत्ति ना होना ये सबसे बड़ी गरीबी है। आपके पास थोड़ा बहुत है लेकिन आप देने की इच्छा रखते नहीं हो तो ये सबसे बड़ी गरीबी है, दरिद्रता है। अगर आपके अंदर देने की इच्छा ही नहीं है, ये सबसे बड़े दरिद्र का लक्षण है। तो वैसे दरिद्र मत बनो, उदार हृदय बनो। उदार धाम में आए हो, उदार हृदय बनो। ये नहीं कह रहे कि करोड़ों रुपये डालो, है नहीं तो कहाँ डालेंगे, लेकिन जो है उसमें से कुछ डालने की प्रवृत्ति रखो, देने की प्रवृत्ति रखो, तब आदमी का जो हृदय जो है वो भी खुल जाता है। और औदार्य धाम का जो औदार्य भाव है हृदय का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का, वो भी प्राप्त करके आप चले जाओ। श्रीवास पंडित महाशय की
जय,
परम राष्ट्रस्थली की
जय,
हरिनाम संकीर्तन की
जय,
गौरंग महाप्रभु की
जय,
हरे कृष्णा।